और बहुत उसमें डिटेल उन्होंने दी है, बट आई विल जस्ट गिव यू वन लाइनर। द एट्थ मीनिंग ऑफ अ समद, स्कॉलर्स कहते हैं, वो जिसको खाने पीने की कोई हाजत नहीं, किसी किस्म की उसको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए किसी सेकेंड ऑप्शन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। असमद जिसको खाने पीने की हाजत नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई मखलूक नहीं है जिसको अपने हिसाब से, अपनी एग्जिस्टेंस के हिसाब से खाने पीने का एहतियाज मोहताजी ना हो। कोई ऐसी मखलूक नहीं है, बिकॉज वो खालिक है, बिकॉज वो यूनिक है, बिकॉज वो असमद है, तो उसको किसी चीज के लिए भी खाने पीने की सॉर्ट ऑफ जरूरत नहीं है। फाइन। नंबर नाइन्थ मीनिंग्स ऑफ असमद, जिसके बगैर मखलूकात की जिंदगी, मखलूकात की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। इमाम अब्दुल कय्यम ने इसके ऊपर बहुत तफसील से बात की है कि वो जिसके ऊपर मखलूकात एक फ्रैक्शन, एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिपेंडेंट हैं, और मखलूकात उसके अटेंशन स्पैन पर कायम है। यानी अगर अल्लाह मुझसे गाफिल हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, अगर ये सोच के बोला जाए तो समझे मेरी एग्जिस्टेंस ख़त्म, मैं फना। दिस इज द नाइन्थ मीनिंग, जिसके बगैर मखलूकात की जिंदगी मुमकिन नहीं है। अब आप सोचें इन नौ मीनिंग्स को अभी फिलहाल, इससे पहले कि मैं टेंथ बताऊं, दीज नाइन मीनिंग्स आर गिविंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपिटल जी गॉड, रब का, अल्लाह का, कि जिसको आप किन हालात में नहीं पुकारेंगे। मैं तो 102% और 200% और 1000% उसकी मोहताज हूँ। नामुमकिन हालात में भी जब आप उसको पुकारते हैं, नामुमकिन, जब आपको अपने सामने कोई पॉसिबिलिटी नज़र ना आए, आप उसको पुकारें और दिल से पुकारें, जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रही है, डोंट फॉरगेट उस असमद में ताकत है उस सबको पॉसिबल करने की, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, या वो उम्मा लेवल की प्रॉब्लम है, या वो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है, या वो यूनिवर्सल लेवल की प्रॉब्लम। हम अक्सर परेशान होते हैं और हम सब पूछते रहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे कोई तस्बीह बता दें, मेरे गम ख़त्म नहीं होते, प्लीज़ कोई तस्बीह बता दें, मेरे हस्बैंड के कारोबार और जॉब में बरकत हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, प्लीज़ कोई तस्बीह बता दें। आज पैंडेमिक ने हर स्ट्रेटा के इंसान को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब कर दिया है, हर स्ट्रेटा के इंसान को। जाहिर बात है जिसके पास जितनी नेमतें कम थीं उसका इम्तिहान उतना ज़्यादा इस वक्त सख्त है, बट इसके इफेक्टिव इस वक्त दुनिया के हर स्ट्रेटा के लोग हैं। फुल कॉन्शियसनेस के साथ, विद द फुल कॉन्शियसनेस, कीपिंग दीज मीनिंग्स इन योर माइंड, करें अल्लाह के नाम और समद की तस्बीह। ये आयत है एक छोटी सी, दो अल्फाज, स्टार्ट फॉर तस्बीह, जब याद आ जाए, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, सोच के बोलें, अल्लाह खजानों का मालिक, मैं अल्लाह की मोहताज, अल्लाह वो जिसको किसी की एहतियाज नहीं, अल्लाह वो जो हर चीज़ को ओवर पावर कर सकता है, अल्लाह वो जो कि मेरी तमाम हाजतों के लिए काफ़ी हो जाएगा। पूरी कॉन्शियसनेस के साथ आप तस्बीह करें, आप अपने हाथ, सीधे हाथ पर तस्बीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, राइट हैंड के जो आपकी लाइंस होती हैं, योर 15 लाइंस, इनके ऊपर तस्बीह की जाती है। या अगर आप में से कोई तस्बीह या काउंटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई मज़ायका नहीं, यू कैन यूज़ दीज रोज़री, तस्बीह और काउंटर अपना यूज़ करें, आप जो भी करें, बट आपकी लाइन एक आप पढ़ें हाथ की लकीर, या आप तस्बीह का दाना गिराएं, या आप काउंटर को क्लिक करें, हर तस्बीह की वन क्लिक के साथ, आई शुड हैव द रियलाइजेशन दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। मैं बिल्कुल ही डल माइंड के साथ और नम माइंड के साथ तस्बीह नहीं करूं, बट कॉन्शियसली करूं, तो चाहे दो दफा करूं या चाहे 200 मरतबा करूं, दिस विल इंशाल्लाह इम्पैक्ट माई लाइफ, दिस विल इंशाल्लाह ब्लेस मी, दिस विल इंशाल्लाह सॉल्व माई इशूज, दिस विल इंशाल्लाह ड्रैग मी आउट फ्रॉम माई क्रिटिकल सिचुएशन जिसके अंदर भी इंसान पड़ा हुआ है। तो ये है अल्लाह के नामों के ऊपर पूरा बिलीफ सिस्टम रखते हुए मूव करना, अपनी परेशानियों को मैनेज करने के लिए एक तस्बीह और इस समद, असमद की तस्बीह करें। और इसी असमत की तस्बीह के अंदर ही स्कॉलर एक बहुत प्रोफाउंड बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के ये जितने मफहूम असमत में हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें एक बेहतरीन तरीका मुसलमानों को ये मिलता है। वो कहते हैं कि इंसान परेशान होता है ना, तो अल्लाह के नामों को याद करता है। अल्लाह के नामों को याद करके उसका अमल उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है, जहाँ वो अल्लाह को पहचानता है, जहाँ अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है उन नामों को जान के, वहाँ उसका अमल भी तो उसके मुताबिक होता है। तो असमत को जानने के बाद आपके अमल में क्या तब्दीली आएगी? अ वेरी ब्यूटिफुल इम्प्लीकेशन। अमल के कई रंग निकल सकते हैं असमत से, लेकिन मैं आज के हालात को सामने रखते हुए और एक कॉन्स्टेंट परेशानी को जो ह्यूमैनिटी को कॉन्स्टेंटली पोक कर रही है, उसको सामने रखते हुए कह रहे हैं, अपनी परेशानियों में जहाँ तस्बीह करें, वहाँ असमत अल्लाह असमत के नाम का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो स्कॉलर्स कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह है ना जो लोगों को मुश्किलात में से निकालता है, तो फिर अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के बंदे अपनी परेशानियों में अल्लाह के नाम से ये सीखते हैं कि अगर इस वक्त मुझ पर परेशानी है और मैंने इस परेशानी में से निकलना है, तो इस नाम के इल्म के मुताबिक मुझे अपने जैसे किसी इंसान को, अपने किसी रिश्ते को, अपने किसी मुसलमान बहन भाई को उसकी परेशानी से निकालने की कोशिश करनी। दिस विल बी द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ असमद इन आवर लाइफ। और मैं आपको हकीकत बताऊं, आप अल्लाह की खातिर जब खासतौर पर जब लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, डिप्रेशन के किसी लेवल पे होते हैं, द बेस्ट थिंग फॉर देम विच दे कैन ड्रैग अ लेसन फ्रॉम अल्लाह असमद, वो खुद को अगर किसी एंगल से हिम्मत दिला सकते हैं। जी हाँ, हिम्मत दिलाने के लिए उनको वाकई बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ स्ट्रेस दे आर इन, अल्लाह ताला सब लोगों को साइकोलॉजिकल और मेंटल इलनेस से महफूज रखे और साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ दे। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए खुद को खड़ा करना ही बाज़ औक़ात एक पहाड़ को सर करने के बराबर होता है। बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ सिंपल वन प्रैक्टिकल टूल। आपको स्ट्रेस में से निकलना है, हिम्मत कीजिए और अपनी मुश्किल में से थोड़ी देर के लिए निकलकर किसी की मदद में मसरूफ हो जाएं। ये असमत का एसेंस हमें प्रैक्टिकली ड्रैग करता है और पुश करता है इस काम के लिए। आप मुश्किल में हैं, आप किसी बहन भाई की मुश्किल दूर करने लग जाएं। और आप कहें मैं लॉकडाउन में किसी बहन भाई की मुश्किल कैसे दूर करूं? लेट मी गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल टूल टुडे। आप में से यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हैं उनके लिए तो बेस्ट थिंग, बच्चियाँ या बेटे अगर सुन रहे हैं तो बेटे भी ये काम करते हैं। किसने कहा कि अम्मी की हेल्प सिर्फ किचन में बेटियाँ करती हैं? बेटे भी करते हैं। डोंट फॉरगेट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम अपने घर के अपने हाथों से किया करते थे। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ मुस्लिम हाउस, जिसके अंदर सब मिलकर काम करते हैं। फाइन, तो आपके लिए बेस्ट थिंग, आपकी अम्मी को गर्मी लग रही है और वो बेचारी किचन में खड़े होकर अकेले फ्रूट चाट बना रही हैं। आपको इस वक्त सख्त डिप्रेशन हो रहा है, आपने रिपोर्ट तैयार करनी है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपके ऊपर इस वक्त एग्जाम्स का प्रेशर है, आपको यूनिवर्सिटी ने कहा है आपका सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन कंप्लीट कराया जाएगा, एंड देन यू विल हैव योर फाइनल टर्म और द मिड टर्म्स, या आपको अपना जो है वो ये थीसिस जो है इसको सबमिट कराना है, एनीथिंग। स्ट्रेस हो जाता है ना बच्चों को, या आप में से किसी एडल्ट खातून को स्ट्रेस हो रहा है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरा घर वैसा नहीं चल रहा जैसा मैं चलाना चाह रही हूँ, इस्लाम पर मैं वैसा अमल नहीं कर रही जैसा मुझे करना चाहिए, किसी भी लेवल का स्ट्रेस हो रहा है, जस्ट बिकम अ हेल्पिंग हैंड ऑफ समवन इन योर होम। किसी का भी हेल्पिंग हैंड बन जाए, किसी की बेडशीट ठीक कर दें, किसी की फ्रूट चाट बना दें, किसी को जो है वो बैठ कर कोई अच्छी बात उनसे शेयर कर लें, उनकी सुन लें। कीप योर सेल्फ बिजी, दीज आर द कोपिंग मैकेनिज्म। और अल्लाह का एक नाम हमें अमल की ये बेहतरीन राह दिखा रहा है। और इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में असमद के लिए ये सबक लिखा है कि असमद हमें यह सिखाता है कि अल्लाह को जानने वाले आसपास के लोगों की मदद ज़रूर करते हैं, किसी भी एंगल से। आप माल से कर सकते हैं, माल से करें, आप दो जुमलों से कर सकते हैं, आप दो जुमलों से करें, आप किसी से सपोर्ट में मशवरे की शक्ल में कर सकते हैं, आप मशवरे की शक्ल में करें। सो दिस इज़ द एसेंस जो कि स्कॉलर्स जो हैं वो असमद के अंदर देते हैं। ये जो अरब थे ये अल्लाह को रहम करने वाला जानते थे, सुनने वाला जानते थे, ये जानते थे कि अल्लाह जो है वो आसमानों पर होता है, लेकिन असमत के साथ इन्होंने अल्लाह को, आसमान के रब को कभी रिलेट नहीं किया था। असमत के अंदर ये जो शुरू में हमजा लाम लगा हुआ है ना, फॉर द अरबिक ग्रामर स्टूडेंट्स, इस हमजा लाम को इसको कहते हैं लाम इस्तिगराक, कैंची वाली कॉफ के साथ इस्तिगराक। इसका मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग हस्ती जिसकी सबको जरूरत है और उसको किसी की जरूरत नहीं है। लाम इस्तिगराक, द टेंथ मफहूम ऑफ असमद, जो अन्नज़्मुद्दुरर फी तनासुबुल आयातु वस्सुवर की किताब में अलबेकाई ने मेंशन किया है। वो कहते हैं कि अल्लाह इज द ओनली हस्ती जो कि डिजायर्ड इस पूरी कायनात के लिए, जिसकी तमन्ना करनी चाहिए और जिसकी तमन्ना हर कोई करता है। जहां हर कोई उसका मोहताज है, वहां हर किसी को उसकी तमन्ना भी करनी चाहिए। असमद के ये सारे मफहूम क्लासिकल स्कॉलर्स लिखते हैं कि अरब जानते थे। कैन यू इमेजिन, क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि अरब ये सारे मफहूम जानते थे, और क्योंकि वो ये जानते थे तो वो तो समझते थे, कुरैश के सरदार खास तौर पर, कि तमाम अरबिन पेनन्सुला को उनकी ज़रूरत है, तमाम कुरैश को अपने सरदारों की ज़रूरत है। अल्लाह उस्समद ने उनको क्या बताया, अनदर स्लैप ऑन देयर फेस। अल्लाह अहद ने तो ऑलरेडी एक स्लैप मारा था, अल्लाह उस्समद ने एक और स्लैप मारा, ऑन देयर फेसेस, स्ट्रेट ऑन देयर फेसेस। अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह है वो हस्ती जिसकी सबको ज़रूरत है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे प्रोटेक्शन दिए बगैर जो है वो ये सारे कबीले चल नहीं सकेंगे, तुम्हारे बगैर जो है वो अरब चल नहीं सकेगा या दुनिया चल नहीं सकेगी। कुरैश खुद और कुरैश का हर सरदार खुद, एक एक इंसान, एक एक मखलूक असमद की मोहताज है। कुरैश को नहीं डिज़ायर करना चाहिए, अल्लाह उस्समद, अल्लाह के लिए इंसान को सोचना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और उसकी तरफ अपनी तमाम हाजतों के लिए देखना चाहिए। ये थे 10 खूबसूरत मीनिंग अल्लाह के एक नाम असमद के, जिसने कुरैश की ज़मीन पर तहलका मचा दिया था। इस नाम को कभी भी किसी मखलूक की इस तरह से क्वालिटी के साथ शेयर नहीं किया गया था। अल्लाह यूनिक है, अल्लाह गनी है, वह अंतुमुल फुकारा, इंसान मोहताज है, अल्लाह उस्समद। और आपने और मैंने भी आज इस मफहूम को इंटरनलाइज करना है। आप एक बात बताएं, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट, आफ्टर लिसनिंग टू दीज 10 शेड्स ऑफ असमद, कैसे हो सकता है इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी माइट और इतनी ग्रेटनेस रखने वाले रब की शरीयत के सामने हम एरोगेंट हो जाएं? हम कहें कि हमें नहीं समझ आती है शरीयत, हम कहें कलमा गो मुसलमान, हम कहें ऑब्सोलीट लगती है ये शरीयत, हम कहें मुझे ज़रूरत नहीं है इस शरीयत की। आज मुसलमान इस सूरतुल इखलास को ज़ुबान से प्रोनाउंस करने वाले कैसे कह सकते हैं कि हमें इस इस्लाम की दी हुई शरीयत की, इन रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है? हम तो एक एक लम्हा उसके मोहताज हैं। जो सांस अंदर गया वो बाहर ना आए अगर वो ना चाहे, जो जो सांस, जो निवाला मेरे मुंह में जा रहा है वो ना चाहे तो मेरी एसोफेगस से मेरे स्टमक तक पहुंच ना सके, जो निवाला मेरे मुंह में गया है वो ना चाहे तो कभी भी वो निवाला मुझे ताकत ना दे बल्कि वो ही निवाला मुझे चोक कर दे, वो ना चाहे जिंदगी देना तो मैं अपने सलाइवा से चोक हो जाऊं। दीज आर द फैक्ट्स। इतना इतना ग्रैंड्योर रखने वाला रब, इतने हम उसके मोहताज, और हम कितने डेयर होकर कहते हैं मुसलमान होते हुए वी डोंट नीड दिस शरिया, वी डोंट नीड दीज रूल्स, वी विल डिसाइड व्हाट वी विल डू, वी डोंट नीड दिस पैकेज डील ऑफ इस्लाम। ना हम ये कर सकते हैं कि हम इस्लाम के सामने एरोगेंट होकर खड़े हो जाएं, ना मुसलमान होते हुए इस असमत के कॉन्सेप्ट के साथ मुसलमानों को कभी भी फितनों से डरना चाहिए। मोमिन फितनों से डरता नहीं है, मोमिन फितनों के सामने रब की देवी शील्ड्स के साथ खड़ा रहता है, बिकॉज उसको पता होता है उसमें ताकत नहीं है मुकाबले की, रब तौफीक देगा, रब हिफाजत करेगा। इतना मजबूत कॉन्सेप्ट होते हुए, इतना मजबूत रब का सहारा होते हुए, हम शैतान के वसवसों के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं मुझसे कंट्रोल नहीं होती अपनी डिजायर्स? हम कैसे कह सकते हैं मुझसे नहीं रुकता है हाथ, बस बार बार जो है वो गलत चीज पर चला जाता है, बार बार गलत चीज पर क्लिक हो जाता है? हाउ कैन वी से दिस? अल्लाहुस्समद को अल्लाहुस्समद कहने वाले ऐसे लो विल पावर के नहीं होते। कैसे हो सकता है कि हम कुफार की कॉन्स्पिरेसीज को सुन सुन के, आज सब सुन रहे हैं ना, ये सब पैंडेमिक ड्रामा है, ये सब प्री प्लान्ड है, ये उसकी फिलॉसफी है, ये उसका फायदा है, ये उसकी कॉन्स्पिरेसी है। एक मुसलमान इन सारी चीज़ों पे, नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट्स, वट एवर इज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन ऑफ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट, यस देर आर कॉन्स्पिरेसीज, बट द फैक्ट इज दिस कि कुफार की कॉन्स्पिरेसीज बिलीवर्स की कमर नहीं तोड़ती कभी भी, बल्कि वो उनको और अल्लाह के साथ क्लिंग कर देती। अल्लाहुस्समद को समझने वाले कभी भी अल्लाह से अपने आप को गाफिल नहीं कर सकते। ये सब हो रहा है अगर कमर टूट रही है, अगर शैतान मजबूत हो रहा है, अगर हमने अपने घुटने कुफार के सामने टेके हैं, अगर हम शरीयत से आज अपने आप को दूर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक वजह से, हम रब को भूले हैं। हमें पता ही नहीं अस्समद का मतलब क्या है। इट्स ओके, इट्स ओके, आज पता चल गया। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। इस रमजान हमने इस रब की मोहब्बत के लैंप को कुछ वोल्ट्स और देने हैं, इसको पावर और देनी है, और अपनी जिंदगी के अंधेरों को हमने दूर करना है हिम्मत के साथ। हमने मुकाबला करना है इन हालात और फितनों का मिलकर। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि इस वर्चुअल दिक्रोला का हिस्सा बने, जो आपको लाइव क्लास के अंदर ईमान की स्पिरिट अपने दिल और दिमाग और अपने एक एक फाइबर में उतरती हुई महसूस होगी। रिकॉर्डिंग सुनकर वैसी नहीं हो सकती, होगी लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं हो सकती। हमने मिलकर अल्लाह को जानना है, हमने मिलकर इंशाल्लाह इन फितनों का मुकाबला करना है, और इन फितनों का मुकाबला करने का पहला कदम इल्म हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कदम हमने उठा लिया है। तो ये है अल्लाहुस्समद का तारुफ। कुल हुवल्लाहु अहद, इनसे कहिए अल्लाह वो है जो यूनिक है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह वो है जो कम्प्लीटली ओवरपावर्ड है, जो कम्प्लीटली एम्पावर्ड है हर चीज, जिसकी ताकत हर शय पर है और कोई शय उसको ओवरपावर नहीं कर सकती। और आयत नंबर 3 आगे आ रही है, beautiful ayah connected with the first two ayahs of Suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, beautiful ayah, lam yalid na uski koi aulad hai, wa lam yulad aur na wo kisi se paida hua, yani jisko urdu mein aap tarjuma karte hain, jiska koi walid ya jiska koi walidain nahi hai, lam yalid उसकी कोई औलाद नहीं है, वलम यूलद वो किसी से पैदा नहीं हुआ। इस आयत के बारे में मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, बिकॉज दिस इज इन डेप्थ स्टडी, तो अगर आपको फ्यूचर में किसी और को सुनने का मौका मिले या किसी तफसीर को पढ़ने का मौका मिले, और यू आर ट्रैवलिंग इन एनी कंट्री ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड और आप वहाँ ये किसी मुसहफ में एक्सपीरियंस करें, तो वहाँ पर आप जो हैं वो पैनिक अटैक ना हो जाए आपको कि ओहो हमारे मुसहफ में तो सूरतुल इखलास की 4 आयात हैं। आपने इजिप्ट में जाकर कोई कुरान उठाया, उसमें आपने देखा कि मुसहफ के अंदर सूरतुल इखलास की 5 आयात, आप कहें या तो ये गलत है या मेरा मुसहफ गलत था। नो वन इज रॉन्ग, फाइन, मैं आपको बता रही हूँ। आयत नंबर 3 सूरतुल इखलास की वो आयत है जिसके ऊपर 2 राय आपको मिलते हैं, इस आयत के ऊपर आपको ये डिस्कशंस मिलते हैं। मेजॉरिटी कुरान के नजदीक रिसाइटर्स जो होते हैं और मेजॉरिटी जो रेसिटेशंस हैं उनके मुताबिक ये एक ही आयत है, जैसे कि हमारे मुसहफ में है लम यलीद व लम यूलद। सो मेजॉरिटी के नज़दीक, मेजॉरिटी जो के आपको मुसहफ मिलेंगे उसमें आपको जो सूरतुल इखलास की आयत का नंबर मिलेगा वो 4 ही है। देर आर सम स्कॉलर्स जिन्होंने اس کو سورت الاخلاص کی آیات کو 5 کہا ہے اور اسی آیت نمبر 3 کی بیسس پہ کہا ہے. کچھ شام کے اسکالرز ہیں اور کچھ پاسٹ کے مکہ کے اسکالرز ہیں جنہوں نے کہا کہ لم یلد آیت نمبر 3 ہے اور ولم یولد آیت نمبر 4 ہے. تو ان کے مطابق کچھ اسکالرز ہیں ان کے مطابق سورت الاخلاص کی 5 آیات ہیں. ناؤ جسٹ کیپ اے سمپل رول اباؤٹ دا آیات آف دا قرآن تاکہ انشاءاللہ آپ کبھی بھی کنفیوز نہ ہو. سورتوں کی آیات کے نمبر کے بارے میں جان لیں. ان میں سے کچھ تو ایسی صورتیں ہیں, میجورٹی تو ایسی صورتیں ہیں, کچھ نہیں میجورٹی ایسی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی آیات کے نمبر توقیفی ہیں. توقیفی لکھتے ہیں تا واؤ قاف یا فا یا توقیفی. توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میجورٹی صورتوں کی آیات کے نمبر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں, میجورٹی. فائن, کچھ ایسی آیات ہیں, کچھ ایسی صورتوں کی آیات ہیں جہاں صحابہ کا اجتہاد ہے. سورۃ الاخلاص از ون آف دیم. ٹھیک ہے, کیونکہ ان صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کو اسپیسیفائی نہیں کیا تھا, آپ نے بس تلاوت کی تھی, آیت نمبر 1, 2, 3, 4 کر کے اسپیسیفائی نہیں کیا تھا. اور یاد رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو ایجپٹ کے کسی مصحف میں سورۃ الاخلاص کی 5 آیات ملتی ہیں اور آپ کو اپنے پاکستان کے مصحف میں 4 آیات ملتی ہیں. دیر از نو ایشو, دیر از نو ایشو ایٹ آل. کیوں؟ اس لیے کہ کانٹینٹ از دا سیم, کانٹینٹ آگے پیچھے نہیں ہے, میسج از دا سیم. اورینٹلسٹ نے, یہ میں نے پوائنٹ اس لیے مینشن کیا ہے کہ الحمدللہ بہت بچے سن رہے ہیں, اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک کہ ہمارے بچوں کے اندر اسلام کا کانفیڈنس آ جائے. آئی وڈ ریئلی لائک کہ ہمارے بچے, ہماری یوتھ اسلام کا ڈیفینس کر سکے. آئی وڈ ریئلی لائک کہ ہمارے بچوں کے اندر اس کتاب کو, اس کا دفاع کرنے کے لیے علم موجود ہو. سو دا پوائنٹ از, اورینٹلسٹ نے یہ پوائنٹ ضرور ریز کیا اپنی ڈبیٹس میں کہ قرآن از نعوذ باللہ پرابلمٹک بیکاز اس کی نمبرنگ انکنسسٹنٹ ہے. تو یاد رکھیں ہمارے اسکالرز نے اس کا جواب دیا ہے اور ہمارا بھی وہی رسپانس ہونا چاہیے کہ سمپل یہ نمبرنگ ارریلیونٹ ہے اگر کہیں کسی صورت میں یہ آگے پیچھے ہے, بیکاز ہمارا میسج اور کانٹینٹ سیم ہے. اور جن صورتوں کی آیات توقیفی ہیں الحمدللہ وہاں کسی قسم کا آپ کو ڈفرینس آف اوپینین نہیں ملتا, آیات کی نمبرنگ سے اس کے کانٹینٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سو دس واز ون پوائنٹ اباؤٹ دا قرات آف آیت نمبر 3 آف سورۃ الاخلاص جو میں نے آپ کو یہاں بتا دیا. موونگ فارورڈ آن دس آیا, لم یلد ولم یولد کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پچھلی دونوں آیات اللہ احد اور اللہ الصمد کا لاجیکل کنکلوژن, جب وہ یونیک ہے, جب اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, جب وہ اسمد ہے, جب وہ ایک سالڈ ایبسلیوٹ کانکریٹ ہستی ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نہ اس کے آگے کوئی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی ہے, یعنی نہ اس کی بگننگ ہے نہ اس کا اینڈ ہے, اسی لیے اللہ الصمد ہے. تو یہ لم یلد ولم یولد کہا جاتا ہے کہ آیت 1 اور 2 کا ہی لاجیکل کنکلوژن ہے. تھرڈ پوائنٹ آیت نمبر 3 کے بارے میں, آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے